एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला तेरा नाम ले यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा।
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का सेवक, फिर से आपके सामने परमेश्वर का वचन लेकर आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले उससे प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए कि हम तेरे पास आ सकते हैं और तेरे वचनों से सुन सकते हैं। परमेश्वर पिता, हमें मदद कर कि हम तेरे वचनों को ध्यानपूर्वक सुनकर उसे समझ सके और उसको अपने जीवन में उपयोग कर सके। मेरे हर एक श्रोताओं के संग हो जो तेरे वचनों को सुन रहे हैं और उन्हें बहुतायत से आशीष दे, उनके परिवारों को आशीष दे, उनके कामों में आशीष दे और उनको उनके हर एक मुसीबतों से छुड़ा और उन्हें तेरे और नज़दीक आने के लिए मदद कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया करके सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर, आमीन। प्यारो, मेरा आज का संवाद का शीर्षक है कलवरी। बाइबल में हम पढ़ते हैं, जब वे उस जगह जिसे खोपड़ी कहते हैं पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ उसे और उन कुकर्मियों को भी, एक को दाहिनी और दूसरे को बाईं ओर क्रूसों पर चढ़ाया। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इब्रानियों 13:12। परमेश्वर की आज्ञा तोड़ देने के कारण आदम और हवा को आदन की बारी से बाहर निकाल दिया गया था। मसीह हमारा एवजी भी यरूशलेम की सीमा से बाहर जाकर दुख उठाया था। वह फाटक के बाहर मुआ, जहाँ पर हत्यारे और भयंकर अपराधियों को मृत्यु दंड दिया जाता था, उसके उस पूर्ण चित्र को इन शब्दों में बयान किया गया है। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। गलतियों 3:13। न्यायालय के कमरे से निकलने पर एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे पीछे कलवरी तक गई। उसके मृत्यु दंड का समाचार पूरे यरूशलेम में फैल गया था और हर समाज और स्तर के लोग उस क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले स्थान की ओर चल पड़े थे। याजकों और अधिकारियों से एक प्रतिज्ञा के अधीन वायदा करा लिया गया था कि मसीह के अनुयायियों के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाएगा और उसकी लाश को उन्हें दे दिया जाएगा। इसलिए नगर के विश्वासी लोग भी उस भीड़ में शामिल हो गए थे जो मुक्तिदाता के पीछे जा रही थी। जब यीशु पिलातुस के न्यायालय के फाटक को पार किया तो वह क्रूस जो बरअब्बा के लिए तैयार किया गया था उसके घायल और खून बह रहे कंधों पर लाद दिया गया। बरअब्बा के दो साथियों को भी उसी स्थान पर यीशु के साथ ही मरना था, अतः उन दोनों पर भी क्रूस लाद दिया गया। मुक्तिदाता को थकावट और कमजोरी के कारण उस भारी क्रूस को उठाना अत्यंत कठिन हो रहा था। फसह पर्व के अपने चेलों के साथ भोज के समय से ही उसने ना तो कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। गतसमनी के बाग में उसने शैतानी आत्माओं से बहुत ही संघर्ष किया था। उसने विश्वासघात की मानसिक पीड़ा को सहा तथा अपने चेलों को उसका साथ छोड़कर चले जाने को भी देखा था। उसे पहले हन्ना और फिर कैफा और फिर पिलातुस के पास ले जाया गया, पिलातुस के पास से हेरोदेस के पास और फिर वापस पिलातुस के पास लाया गया था। अपमान के बाद अपमान, ठट्ठेबाजी के बाद ठट्ठेबाजी, दो बार कोड़े लगाए गए, पूरी रात एक दृश्य के बाद दूसरा दृश्य ऐसे पेश किया गया कि एक मनुष्य का शरीर और आत्मा दोनों पिस जाएं, कुचल जाएं। परंतु मसीह असफल नहीं हुआ, उसने एक भी शब्द नहीं कहा बल्कि परमेश्वर की महिमा को प्रकट किया। अपमानजनक जांच पड़ताल के पूरे समय वह अपने आत्म सम्मान और निश्चयता पर दृढ़ रहा। परंतु दूसरी बार कोड़े लगाने के पश्चात भारी क्रूस को जब उस पर लाद दिया गया तो एक मनुष्य के रूप में सहन नहीं कर पाया, उस बोझ के नीचे मूर्छित होकर गिर पड़ा। जो भी भीड़ मुक्तिदाता के पीछे चल रही थी उसने उसके डगमगाते कदमों को देखा, परंतु उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई। उन्होंने उसके भारी क्रूस को लेकर ना चल पाने का मजाक उड़ाए और ताने मारे। बार बार उस पर बोझ डाला गया और वह फिर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके सताने वालों ने देखा कि उस बोझ को और आगे ले जाने में वह असमर्थ है। वे लोग परेशान थे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसके लिए उस क्रूस के बोझ को ले जा सके। यहूदी स्वयं ऐसा नहीं करना चाहते थे क्योंकि वे अपवित्र हो जाएंगे और फसह पर्व में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। जो भीड़ उसके पीछे चल रही थी उनमें से भी किसी ने आगे होकर उस क्रूस को नहीं उठाया। उसी समय एक अनजान परदेशी जिसका नाम समोन था और जो कुरेनी का रहने वाला था अपने गांव से आ रहा था, रास्ते में इस भीड़ से मुलाकात हो गई। वह उस भीड़ द्वारा किए जा रहे तानाकसी और गाली गलौज को सुनता है। वह बार बार दोहराए जा रहे उन्हीं शब्दों को सुनता है कि यहूदियों के राजा को जाने के लिए रास्ता छोड़ो। वह इस दृश्य को चकित होकर देखता है और रुक जाता है, और जब वह उसके साथ दया दिखाने की बात करने लगता है तो वे लोग उसे ही पकड़ लेते हैं और उसी के कंधों पर उस क्रूस को लाद देते हैं। समोन ने यीशु के विषय में सुन रखा था, उसके बेटे लोग मुक्तिदाता के विश्वासी थे परंतु स्वयं वह विश्वासी नहीं था। क्रूस को उठाकर कलवरी तक ले जाने के लिए समोन को जो आशीष मिली थी उसके बाद जीवन भर उस सुख घड़ी के लिए वह आभारी रहा। उसने मसीह के क्रूस को लेकर चलने के लिए स्वयं को सौभाग्यशाली समझा और पूरे जीवन भर उसके भार के नीचे खुशी के साथ चलता रहा। कुछ स्त्रियां भी यीशु के पीछे चलने वाली उस भीड़ में शामिल थी जिनकी नजरें यीशु ही पर लगी हुई थी। उनमें से कुछ स्त्रियों ने पहले भी मसीह को देख रखा था, कुछ ऐसी भी थी जो अपने बीमारों को चंगाई के लिए मसीह के पास लाई थी, कुछ ऐसे थी जो स्वयं चंगाई पाई हुई थी। उनके जीवन में जो घटनाएं हुई थी उनकी कहानियां एक दूसरे को बता रही थी। मसीह के कष्ट को देखकर वे रो रही थी, उनका हृदय रो रहा था। भीड़ द्वारा उसके साथ किए जा रहे घृणापूर्ण व्यवहार देखकर वे चकित थी। पागल होती जा रही भीड़ तथा याजकों और अधिकारियों के कार्यों को देखते हुए भी ये स्त्रियां यीशु के लिए दुख और सहानुभूति प्रकट कर रही थी। जब यीशु मूर्छित होकर क्रूस के नीचे गिर पड़ा तो वे जोर जोर से बिलाप करने लगी। यही एक ऐसा दृश्य था जिसने मसीह के ध्यान को अपनी ओर खींच लिया। यद्यपि संसार के पाप के बोझ तले पीड़ा से वह तड़प रहा था, परंतु दूसरों के कष्ट और पीड़ा से वह बेखबर नहीं था। बड़ी कोमल करुणा भरे भाव से उसने उन स्त्रियों की ओर देखा। वे स्त्रियां मसीह पर विश्वास रखने वाली नहीं थी। उसे मालूम था कि वे इसलिए विलाप नहीं कर रही हैं कि वह परमेश्वर का भेजा हुआ है, बल्कि इंसानी दया से अभिभूत होकर वे ऐसा कर रही हैं। उसने उनकी सहानुभूति का निरादर नहीं किया, बल्कि उसके हृदय में उनके प्रति गहरी संवेदना जाग उठी। उसने कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। उस क्षण यीशु के सामने जो दृश्य था, उससे हटकर उसने भविष्य में होने वाली यरूशलेम की बर्बादी के दृश्य को देखा। उस भयानक दृश्य में उसने देखा कि जो इस समय उसके लिए रो रही हैं, वे अपने बच्चों के साथ नाश हो जाने वाली थीं। यरूशलेम के विनाश के दृश्य से हटकर यीशु का ध्यान उस महान न्याय पर चला गया। उसने पश्चातापहीन नगर की बर्बादी में संसार की बर्बादी का प्रतीक देखा। उसने कहा, उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो और टीलों से कि हमें ढांप लो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। हरे पेड़ के उदाहरण द्वारा यीशु अपने आप को निर्दोष मुक्तिदाता के रूप में प्रकट करता है। पाप के कारण जो कष्ट परमेश्वर के प्रिय पुत्र को सहना पड़ा, उसके उस कष्ट को स्वयं परमेश्वर ने भी सहा। मनुष्य के पापों के कारण यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। तो जो भी पापी पाप में लगातार डूबा रहता है, उस पापी को कितना भारी कष्ट सहना पड़ेगा। प्रत्येक पश्चाताप न करने वाले को, प्रत्येक विश्वास न करने वाले को कितना भयानक कष्ट सहना होगा, इसका वर्णन करने के लिए कोई उचित शब्द नहीं है। मुक्तिदाता के पीछे जो भीड़ कलवरी तक गई थी, उसमें बहुत से ऐसे लोग भी थे जो यीशु के उस विजयी जुलूस में, जब वह गधी पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था, तो होसन्ना होसन्ना के नारे लगाते हुए तथा खजूर की डालियां हिलाते हुए चल रहे थे। परंतु उनमें से बहुत से ऐसे भी थे जो उस समय स्तुति और महिमा के नारे लगा रहे थे, मगर अब ऊंची आवाज में कह रहे थे, उसे क्रूस पर चढ़ा दो, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। जब मसीह गधी पर सवार होकर जा रहा था, तो चेलों की आशाएं और आकांक्षाएं आसमान तक पहुंच गई थी। वे उस समय अपने गुरु के बहुत ही करीब आना चाहते थे। सोचते थे कि उसके साथ संबंध रखना महान गौरव की बात होगी, और अब उसके अपमानित होने के समय उससे दूर दूर चल रहे थे। वे लोग महान संताप और शोक से भरे हुए निराशा में डूबे अपने सिरों को झुकाए चल रहे थे। यीशु के कहे हुए वे वचन किस प्रकार से सही साबित हो रहे थे कि तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़े तितर बितर हो जाएंगी। मत्ती 26:31। दंड देने वाले स्थान पर लाकर कैदियों पर अतिशय अत्याचार किया जाता था। वे दो चोर जब क्रूस पर लिटाए जा रहे थे, तो उन्होंने सिपाहियों से संघर्ष करना आरंभ कर दिया था, परंतु यीशु ने बचने का कोई प्रयास नहीं किया। यीशु की माता उसके प्रिय चेले यहुना की सहायता से अपने पुत्र के पीछे पीछे कलवरी तक आई थी। उसने क्रूस के बोझ तले बेहोश होकर गिरते हुए देखा था और चाहती थी कि उसके घायल सिर के नीचे अपनी बाहें रख दे और उस खून बहते बाहों को, जो कभी उसकी गोद में तकिया बना लेती थी, उन्हें धोकर साफ कर दे। परंतु उससे इस शोक भरे कार्य को करने के लिए भी अनुमति नहीं मिली थी। चेलों की ही तरह मरियम को भी आशा थी कि यीशु अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा और अपने दुश्मनों से अपने आप को बचा लेगा। एक बार फिर उसका हृदय डूब जाएगा जब उसने उस दृश्य को याद किया जो मसीह ने बहुत पहले ही कह दिया था, और वैसा ही हो रहा था। जब डाकुओं को क्रूस पर बंधा जा रहा था तो वह बड़ी पीड़ा और दुविधा के साथ उसे देखने लगी। क्या वह जिसने मुर्दे को जीवित कर दिया था क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर देगा? क्या परमेश्वर के पुत्र को इस क्रूरता के साथ वध कर दिया जाएगा? क्या मरियम इस विश्वास को त्याग दे कि यीशु ही मसीह है? क्या वह उसके अपमान भरे कष्ट और पीड़ा को ऐसे ही देखते रहे? उसे इतना भी अवसर ना मिले कि वह उसकी ऐसी दशा में देखभाल व सेवा कर सके? उसने देखा कि यीशु के हाथों क्रूस पर फैला दिया गया है, कीले और हथौड़ा मंगाया गया है, और जब कील उसके मुलायम बदन के मांसों में ठोका गया तो माँ को मूर्छित हो जाने वाली दशा में देखकर चेले लोग उस पीड़ादायक दृश्य से दूर चले गए थे। मुक्तिदाता ने कोई भी शिकायत नहीं किया। यीशु अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर रहा था, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। उसका मन अपने दुखों से हटकर अपने सताने वालों पर चला गया जिन्हें इसका भयंकर बदला दिया जाएगा। उनकी नासमझी और गलती पर यीशु को दया आने लगी। उसने उन्हें क्षमा करने के लिए विनती किया क्योंकि वे जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। यदि उन्हें यह मालूम होता कि जिसे वे सता रहे हैं वह इस संसार में पापियों को नाश होने से बचाने के लिए आया है तो वे डर कर उससे दूर भाग गए होते, परंतु उनकी नासमझी उन्हें दोषी होने से मुक्त नहीं करती है। उनके लिए तो यह एक सुअवसर था कि वे यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानकर स्वीकार कर लेते। उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जो अपनी गलती को मानकर पश्चाताप करते हुए मन परिवर्तन कर लेंगे, परंतु बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपनी कठोरता के कारण मसीह की उस प्रार्थना को अपने लिए पूरा नहीं होने देंगे। फिर भी परमेश्वर का उद्देश्य अब पूरा होने वाला था। यीशु वह अधिकार प्राप्त करने जा रहा था कि मनुष्यों की ओर से पिता के सामने वकालत कर सके। उस क्रूस पर से अपने दुश्मनों के लिए मसीह की जो प्रार्थना थी वह सारे विश्व के लिए है। यह प्रार्थना संसार की सृष्टि से लेकर अंत समय तक के उन सारे पापियों के लिए थी जो मर चुके हैं या अभी जीवित हैं। क्रूस पर बलिदान हो रहे परमेश्वर के पुत्र के ऊपर सारा पाप लाद दिया गया था। सभी पापियों के पाप को क्षमा करने की प्रार्थना की गई थी। जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसे परमेश्वर की शांति और अनंत जीवन प्राप्त होगा। ज्यों यीशु को क्रूस पर कीलों से ठोक दिया गया तो वहां पर कुछ मजबूत आदमियों ने उस क्रूस को उठाकर खड़ा करने के लिए निश्चित स्थान पर लेकर चल पड़े थे। उस समय परमेश्वर के पुत्र को बहुत ही पीड़ा हुई थी। मसीह के क्रूस पर दुख उठाने के विषय में की गई भविष्यवाणी पूरी हुई थी। उन्होंने कहना आरंभ कर दिया था, यीशु के दोनों तरफ दो डाकू, एक दाहिना तरफ एक बायां तरफ क्रूस पर लटकाए गए थे, और क्रूस के सामने जो लोग खड़े थे वे लोग भी उसको देख करके हंसी ठट्ठा कर रहे थे। याजक लोग भी कह रहे थे, ये दूसरों को बचाया अपने आप को नहीं बचा सकता है। यह शैतान का परीक्षा था जैसा वह मरुभूमि में परीक्षा करने आया था। वे लोग कह रहे थे, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतर आ, यदि यह परमेश्वर का मसीह है और उसका चुना हुआ है तो अपने आप को बचा ले। इसी तरह एक डाकू भी जो उसके एक तरफ क्रूस पर लटकाया गया था कह रहा था, परंतु और एक डाकू जो उसका दूसरे तरफ क्रूस पर लटकाया हुआ था वही सब सुन रहा था, और उसने अपने साथी की मुक्ता बातों को भी सुना, और वह उसे कहता है, तुम नहीं जानते हो कि हम सब यह दुख अपने पाप के कारण सह रहे हैं, परंतु यह तो कुछ भी गलती नहीं किया है, यह निर्दोष है, यह निष्कलंक है। और वह यीशु से कहता है, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आएगा तो मेरी शुद्धि लेना, मुझे याद करना। इस तरह का वह यीशु से विनती करता है, और यीशु उसका बात को सुन लेता है और जो भी कि यीशु बहुत पीड़ा में था, बहुत दुख सह रहा था, उसको तुरंत उत्तर देता है, कहता है कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। यीशु उसे आश्वासन दिया कि जब यीशु अपना महिमा में आएगा, वह भी स्वर्ग में बचा लिया जाएगा। वही दिन वह स्वर्ग में नहीं जाने वाला था, लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है कि उसी दिन उसको यीशु मसीह ने आश्वासन दिया कि उसे बचाया जाएगा और वह स्वर्ग में पाया जाएगा। जब सारे लोग ठट्ठा मजाक कर रहे थे, तब उस समय उस मरने वाला डाकू का प्रेम और विश्वास को देखकर मुक्तिदाता बहुत ही हर्षित और उत्साहित हुआ। परंतु अंतिम घड़ी में पछताव कर रहा एक डाकू को यीशु ने बचा लिया। उसने क्रूस पर मर रहे यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया था। हाँ प्यारो, यीशु मसीह क्रूस पर बहुत दुख सहा, बहुत पीड़ा सहा, लेकिन वह हमारे लिए सहा। और यदि हम उससे मांगते हैं क्षमा, उससे हम पछताव करके उसके पास आते हैं और क्षमा मांगते हैं, वह हमें सुनेगा जिस तरह वह उस डाकू को सुना, और हमें क्षमा देगा और हमारा उद्धार होगा। हमें चलिए उस डाकू के समान अपने आप को टटोले, अपने पाप को समझे और माने, और यीशु मसीह को स्वीकार करें कि हम विश्वास करके उद्धार पा सकते हैं। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और वह हमें बचाना चाहता है। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं पिता। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तू हमसे अति प्रेम किया, तू हमारे लिए बहुत दुख सहा और हमें पाप से बचाने के लिए मृत्यु तक को सहा। हमें तू ग्रहण कर, हमारे पापों को क्षमा कर, हम तेरे पास आते हैं और हमें उद्धार कर। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें, या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindiarsamc@sudaventist.org।
मैं हूँ गौरव चौहान,
और मैं हूँ सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।